एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में पत्रकारिता को एक नई दिशा दी।
जी हाँ, किताब है कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड की ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन।
बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।
सही कहा, जब भी सत्ता, सच और मीडिया के रिश्ते की बात होती है, इस किताब का जिक्र जरूर आता है ना?
100%। सवाल तो आज भी वही है, जो पावर में है उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा, एक आजाद प्रेस का रोल क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। और ये किताब इन्हीं सवालों को एक सच्ची जबरदस्त कहानी के जरिए उठाती है, दिखाती है कि कैसे दो यंग रिपोर्टर्स अमेरिका के सबसे पावरफुल आदमी के पीछे सच जानने निकल पड़े।
तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस किताब के पन्नों को पलटेंगे, समझेंगे कि कैसे एक मामूली सी चोरी की खबर ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया,
और इस पूरी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं उन लोगों से जिनके बिना ये कहानी मुमकिन ही नहीं थी, लेखक।
हाँ, कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड। और देखिए, मजे की बात यह है कि जब ये सब शुरू आया ना, तब ये कोई बहुत फेमस जर्नलिस्ट नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, द वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज रूम में बस दो कह लीजिए नए चेहरे थे।
हाँ, बॉब वुडवर्ड येल ग्रेजुएट थे, पहले नेवी इंटेलिजेंस में काम किया था, मतलब एकदम सधे हुए, क्या कहते हैं, मेथोडिक किस्म के रिपोर्टर।
बिल्कुल, बारीकी से काम करने वाले।
हाँ, बहुत धैर्यवान और कॉन्टैक्ट्स बनाने में माहिर। और सोचे, वाटरगेट के टाइम उन्हें पोस्ट में आए हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे।
सिर्फ 9 महीने। और दूसरी तरफ कार्ल बर्नस्टीन, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे।
हाँ,
16 साल की उम्र से ही पत्रकारिता में आ गए थे कॉपी बॉय के तौर पर।
वुडवर्ड से एकदम अलग,
बिल्कुल उलट।
लिखने का अंदाज थोड़ा शोख, जमीनी हकीकत की गहरी समझ और मुश्किल से मुश्किल सोर्स से भी, मतलब बात निकलवाने का हुनर था उनमें।
कॉम्प्लेक्स जानकारी को कहानी में पिरोना जानते थे।
हाँ, बिखरी हुई जानकारी को कहानी की शक्ल देना उन्हें बखूबी आता था।
और शायद यही कॉन्ट्रास्ट, ये जो उनका अलग अलग अंदाज था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, है ना? एक शांत, अंदर की खबर लाने वाला,
और दूसरा थोड़ा एग्रेसिव, बाहर से कहानी खुरीदने वाला।
हाँ, और ये किताब सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग का लेखा जोखा नहीं है, ये उनके अपने सफर की कहानी भी है।
बिल्कुल, वो देर रात दरवाजे खटखटाना, फोन पर धमकियां मिलना,
उफ,
वो पार्किंग गैराज वाली सीक्रेट मीटिंग्स, व्हाइट हाउस का प्रेशर,
वो सब कुछ। वो कहानी सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो उस कहानी का हिस्सा थे, उसे जी रहे थे।
और उनकी ये जुगलबंदी ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जान थी, उसका इंजन थी।
है तो ये नॉन फिक्शन, लेकिन पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई तेज रफ्तार जासूसी नॉवेल पढ़ रहे हो।
बिल्कुल सही, और इसका फोकस इस बात पर है कि कैसे इन दो रिपोर्टर्स ने तमाम मुश्किलों के बावजूद धीरे धीरे, परत दर परत, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश किया।
हाँ, ये कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है कि कुर्सी पर बैठ के लिख दिया।
नहीं नहीं, ये एकदम जमीनी हकीकत है, फील्ड रिपोर्टिंग की कहानी है, मेहनत वाली,
जिसे शू लेदर रिपोर्टिंग कहते हैं।
हाँ, शुरुआत होती है 17 जून 1972 को, वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर में एक चोरी होती है। देखने में तो एक मामूली घटना लगती है,
लेकिन यहीं से चीजें उलझना शुरू होती हैं। पता चलता है कि चोरों का कनेक्शन CIA से है और राष्ट्रपति निक्सन की इलेक्शन कमेटी क्रीप से भी।
क्रीप यानी कमेटी टू रीएलेक्ट द प्रेसिडेंट।
चुगलवाने की कोशिश होती है,
और किताब पढ़ते हुए पाठक भी उनके साथ सफर करता है, उनका शक, उनका डर, उनकी निराशा,
और फिर अचानक मिली किसी छोटी सी कामयाबी का वो थ्रिल, वो सब महसूस होता है।
बिल्कुल, और इस प्रोसेस में खोजी पत्रकारिता की जो तकनीकें हैं वो सामने आती हैं, घंटों की मेहनत, अनगिनत फोन कॉल्स,
हर जानकारी को वेरीफाई करना, 2-3 स्रोतों से कंफर्म करना।
हाँ, और दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ना, और जाहिर है गुमनाम स्रोतों का इस्तेमाल, जिसमें सबसे फेमस नाम है डीप थ्रोट।
उनकी भूमिका, उनसे जुड़ी नैतिकता, उनकी जरूरतें, ये सब इस किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है।
साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज रूम का माहौल भी दिखता है, कैसे बेन ब्रैडली जैसे एडिटर्स ने इन रिपोर्टरों का साथ दिया, उन पर भरोसा किया,
और भारी दबाव से उन्हें बचाया भी, ये भी कहानी का हिस्सा है।
किताब का दायरा फिर धीरे धीरे फैलता है, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं रहती।
नहीं, ये निक्सन के विरोधियों के खिलाफ छेड़े गए एक सीक्रेट डर्टी ट्रिक्स कैंपेन की कहानी बन जाती है,
और फिर सामने आता है उस सबसे बड़े सच को छिपाने का प्रयास, कवर अप। और इसमें व्हाइट हाउस के सबसे बड़े नाम शामिल थे।
एचआर हाल्डमैन, जॉन अर्लिचमैन, जॉन मिशेल, ये सब नाम आते हैं। किताब मई 1973 में खत्म होती है, निक्सन के इस्तीफे से पहले।
हाँ, लेकिन उस मोड़ पर जब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक अखबारी कहानी नहीं, ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है।
बिल्कुल। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कुछ अहम पड़ाव थे इसमें।
हाँ, पहला पड़ाव तो वही था जिसे व्हाइट हाउस ने मजाक में तीसरे दर्जे की चोरी कहा था। जून से अगस्त 1972 का टाइम।
वुडवर्ड को ये केस मिला था और शुरू में लगा कि ये कोई रूटीन क्राइम रिपोर्टिंग होगी,
पर कुछ चीजें थीं जो अजीब थीं। चोरों के पास हजारों डॉलर कैश थे, वो भी सीक्वेंशियल नोट्स में।
अच्छा।
वुड हंट का नाम।
हाँ?
और साथ में लिखा था WH या W हाउस, व्हाइट हाउस।
अरे बाप रे।
व्हाइट हाउस फोन करने पर कनेक्शन पता चला, राष्ट्रपति के खास सहयोगी चार्ल्स कोल्सन के ऑफिस से जुड़ रहा है।
तो मतलब सीधा लिंक मिल गया एक तरह से।
हाँ, व्हाइट हाउस ने तो इसे खारिज कर दिया। प्रेस सेक्रेटरी रॉन ज़िगलर ने कहा यह तीसरे दर्जे की चोरी है।
लेकिन वुडवर्ड और बर्नस्टीन की जोड़ी अब इस पर लग चुकी थी।
और जब पता चला कि चोरों में से एक जेम्स मैकॉर्ड निक्सन की चुनाव समिति क्रीप का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर था,
तब तो शक गहरा गया होगा। बिल्कुल।
यहीं से शुरू हुआ दूसरा अहम पड़ाव, पैसों का पीछा करना, सितंबर अक्टूबर 1972।
हाँ, ये शायद जांच का सबसे मुश्किल और सबसे अहम हिस्सा था। डीप थ्रोट की वो मशहूर सलाह फॉलो द मनी यही काम आई।
बिल्कुल। वो $25,000 का कैशियर चेक जो एक चोर के बैंक अकाउंट में मिला था।
हाँ हाँ, याद है।
उसे ट्रेस करते करते वो रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े फंड रेजर केनेथ डॉलबर्ग तक पहुंच गए।
अच्छा।
इसने सीधे तौर पर कैंपेन के पैसे और इस अपराध को जोड़ दिया।
ये बहुत बड़ा कनेक्शन था।
फिर क्रीप के अंदर एक सीक्रेट फंड का पता चला जिसे जॉन मिशेल जैसे बड़े लोग कंट्रोल कर रहे थे,
और इसमें ह्यू स्लोन जो क्रीप के पूर्व कोषाध्यक्ष थे और इस्तीफा दे चुके थे, वो एक अहम सोर्स बने, है ना?
बिल्कुल। वो बहुत डरे हुए थे, पर उन्होंने सीधे नाम नहीं लिए मगर इशारा कर दिया कि व्हाइट हाउस के बहुत सीनियर अधिकारी जैसे हाल्डमैन इस सीक्रेट फंड और कवर अप में शामिल हैं।
इससे पूरी साजिश का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो सामने आ गया।
पैसों की इस परत के नीचे एक और कहानी दबी हुई थी जो तीसरे पड़ाव में खुलकर सामने आई, डर्टी ट्रिक्स का कैंपेन।
अक्टूबर 1972।
हाँ, पता चला कि वाटरगेट चोरी कोई अकेली घटना नहीं थी।
अरे नहीं,
ये तो निक्सन के विरोधियों, खासकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को बदनाम करने, उनके अभियान में जासूसी करने के लिए व्हाइट हाउस और क्रीप ने एक राष्ट्रव्यापी गुप्त ऑपरेशन चला रखा था। ये उसका हिस्सा थी।
डोनाल्ड सेग्रेटी नाम का एक वकील इस काम में लगा हुआ था, जाली चिट्ठियां फैलाना।
हाँ, वो कुख्यात कनक लेटर जिसने मस्की के कैंपेन को बहुत नुकसान पहुंचाया था।
जासूस लगाना, रैलियों में गड़बड़ी करना,
ये सब।
और सबसे अहम कड़ी क्या थी?
केस सिक्योरिटी को पेमेंट उसी सीक्रेट क्रीप फंड से हो रहा था जिससे वाटरगेट चोरों को पैसा गया था।
जबरदस्त कनेक्शन। इसने साबित कर दिया कि ये कोई छुटपुट चोरी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर एक सोचा समझा हमला था।
लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा आपने पहले कहा, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने निक्सन के करीबी सहयोगियों से जुड़ी ये कहानी छापी।
हाँ, नाम लेकर छापी,
पर जनता पर ज्यादा असर नहीं हुआ। निक्सन भारी बहुमत से जीत गए।
ये उन रिपोर्टरों के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। यकीनन। और यहीं से शुरू होता है चौथा पड़ाव, जो शायद सबसे रहस्यमयी है, डीप थ्रोट और गहराती साजिश, नवंबर 1972 से मार्च 1973 तक।
चुनाव के बाद कहानी थोड़ी ठंडी पड़ती दिखी, पोस्ट पर भी दबाव बढ़ने लगा था।
ऐसे में वुडवर्ड के वो सीक्रेट सोर्स जिन्हें डीप थ्रोट नाम दिया गया, उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई।
वो अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में रात के अंधेरे में सीक्रेट मुलाकातें, फिल्मों जैसा लगता है।
बिल्कुल। डीप थ्रोट सीधे जानकारी नहीं देते थे, है ना?
नहीं, वो कन्फर्म करते थे, इशारा करते थे, गाइड करते थे, कॉन्टेक्स्ट देते थे।
उन्होंने ही आगाह किया कि मामला बहुत बड़ा है, उनके जान को भी खतरा हो सकता है।
और उन्होंने ही कन्फर्म किया कि असली कहानी चोरी नहीं बल्कि उसका कवर अप है, और ये व्हाइट हाउस के टॉप लेवल तक जा रहा है।
हाल्डमैन की सीधी इन्वॉल्वमेंट कन्फर्म की, राष्ट्रपति की जानकारी की तरफ भी इशारा किया।
उनके गाइडेंस ने ही रिपोर्टर्स और एडिटर्स को वो हिम्मत दी कि वो व्हाइट हाउस के जबरदस्त खंडन के बावजूद खबरें छापते रहें। उस दौर का मनोवैज्ञानिक दबाव और अखबार पर जो प्रेशर था वो किताब में बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
और फिर आया पांचवा और आखिरी पड़ाव, जब कवर अप की दीवारें दरकने लगी, मार्च से मई 1973।
वुडवर्ड बर्नस्टीन की लगातार रिपोर्टिंग का असर और साथ में कोर्ट में जज जॉन सिरका का दबाव।
हाँ, जज सिरिका को शुरू से शक था कि चोर अकेले काम नहीं कर रहे।
बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक चोर जेम्स मैककॉर्ड ने जज को चिट्ठी लिखी।
क्या कहा था उस चिट्ठी में?
उसमें दावा किया कि गवाहों ने झूठी गवाही दी है और अभियुक्तों पर चुप रहने और जुर्म कबूल करने के लिए ऊपर से दबाव डाला गया था।
बस इसी ने जैसे बांध तोड़ दिया।
हाँ, फिर दूसरे लोग भी सच बोलने लगे, प्रोसिक्यूटर्स से सहयोग करने लगे।
और सबसे बड़ा नाम जॉन डब्ल्यू डीन थर्ड का था, राष्ट्रपति के अपने वकील।
उन्हें लगा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने तय किया कि वो सब कुछ बता देंगे।
सरकारी गवाह बन गए।
और किताब यहीं खत्म होती है। सीनेट की वॉटरबेट कमेटी बन चुकी है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो चुका है।
व्हाइट हाउस के टॉप सहयोगी हाल्डमैन, अर्लिकमैन, डीन इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं।
कहानी अब सिर्फ दो रिपोर्टरों की नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय संकट बन गई थी। निक्सन के पतन का रास्ता अब साफ दिखने लगा था।
इस पूरी जबरदस्त कहानी से जो सबक या थीम्स निकल कर आती हैं, वो आज भी मतलब बहुत मौजू है।
हाँ, सबसे पहली और शायद सबसे अहम, एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस की ताकत और उसकी जिम्मेदारी।
बिल्कुल, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं ना,
जी,
उसकी भूमिका ये किताब बखूबी दिखाती है। अगर वॉशिंगटन पोस्ट ने ये जांच ना की होती
तो शायद वाटरगेट का सच कभी बाहर ही नहीं आता।
बिल्कुल, लेकिन ये ताकत जिम्मेदारी भी लाती है, अखिल बीसी की, अपने स्रोतों की सुरक्षा की, दबाव के सामने न झुकने के साहस की।
भारत में भी आजाद मीडिया के महत्व पर हम कितनी बात करते हैं, ये किताब उस बहस को एक ठोस रियल लाइफ उदाहरण देती है।
सही। दूसरी थीम है सत्ता का नशा, कैसे पावर करप्ट करती है और भ्रष्टाचार का वो फैलता हुआ जाल।
निक्सन व्हाइट हाउस में जो एक माहौल बन गया था, शक का, जीत ही सब कुछ है वाला एटीट्यूड, उसी ने इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया।
ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल था, एक तरह का अवैध राजनीतिक युद्ध।
और ये दिखाता है कि कैसे सत्ता इंसान को अंधा कर सकती है, कैसे लोग राजनीतिक वफादारी के नाम पर गलत कामों, यहाँ तक कि आपराधिक कामों को भी सही ठहराने लगते हैं।
ये हमें हमेशा अलर्ट रहने की सीख देता है कि सत्ता कहीं भी किसी भी रूप में निरंकुश न होने पाए।
तीसरी अहम बात जो इस किताब से उभर कर आती है वो है स्रोतों का महत्व। सोर्सेस कितने क्रिटिकल होते हैं।
हाँ, खोजी पत्रकारिता बिना स्रोतों के तो हो ही नहीं सकती। ये पूरी जांच दर्जनों लोगों से मिली जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही बनी थी।
बिल्कुल, ह्यू स्लोन जैसे लोग जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर सच की तरफ इशारा किया, उनका साहस।
और जाहिर है डीप थ्रोट, गुमनाम स्रोतों की भूमिका तो अमर हो गई इस कहानी से।
ये दिखाता है कि स्रोतों का विश्वास जीतना और उनकी सुरक्षा करना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, भारत में भी हम अक्सर विसल ब्लोअर्स की चुनौतियों और उनके महत्व के बारे में सुनते हैं, ये किताब उस पहलू को भी रेखांकित करती है।
और आखिरी थीम जो शायद उतनी ग्लैमरस नहीं लगती पर है बहुत जरूरी, वो है लगन, दृढ़ता और बहुत बारीकी से काम करने का महत्व, मेथोडिकल अप्रोच।
हाँ, वो शू लेदर रिपोर्टिंग वाली बात। खोजी पत्रकारिता दूर से भले ही रोमांचक लगे, पर असल में ये घंटों की कड़ी मेहनत है, बार बार फैक्ट चेक करना, निराशा के बावजूद हार ना मानना।
वुडवर्ड और बर्नस्टीन के सफलता का एक बड़ा राज यही था, उनका अनुशासन, हर मुख्य तथ्य के लिए कम से कम दो स्वतंत्र स्रोत खोजना,
देर रात तक काम करना, हर दरवाजा खटखटाना, हर इनकार को चैलेंज करना।
ये किसी भी काम में संपूर्णता, थरोनेस और लगन की कीमत समझाता है।
अच्छा, इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, कुछ यादगार विचार, कोट्स नहीं कहेंगे पर एसेंस है कहानी का।
हाँ, जैसे डीप थ्रोट की वो सलाह, पैसे का पीछा करो, फॉलो द मनी।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरा फिलॉसफी है इन्वेस्टिगेशन का, है ना?
बिल्कुल, जब सब कुछ कंफ्यूजिंग लगे, बयानों का शोर हो, तो उस चीज पर फोकस करो जो ठोस है, जिसका निशान है, और वो अक्सर पैसा होता है।
खोजी पत्रकारिता का मूल मंत्र बन गया ये।
और वो व्हाइट हाउस का जो टालमटोल का तरीका था, जिसे हम इनकार ना करने वाला इनकार, द नॉन डिनायल डिनायल कह सकते हैं।
हाँ हाँ, सीधे नहीं कहने के बजाय सवाल पर ही सवाल उठा देना, रिपोर्टर की नियत पर शक करना,
या ऐसी गोलमोल बात कह देना जिसका कोई सिर पैर ना हो, जो इनकार जैसा लगे पर हो नहीं।
ये तरीका तो आज भी खूब इस्तेमाल होता है, तथ्यों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वाले को ही डिस्क्रेडिट कर दो।
बिल्कुल, एक और अहम एहसास जो उन रिपोर्टरों को हुआ, कवरअप सिर्फ चोरी को छिपाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गुप्त ऑपरेशन को छिपाने के लिए था।
ये समझना कि मामला सिर्फ एक चोरी से कहीं ज्यादा बड़ा है। व्हाइट हाउस की घबराहट सिर्फ उस ब्रेक इन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सालों से चल रहे एक बड़े अवैध अभियान को बचाने के लिए थी।
इसने पूरी जांच का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। दिखाता है कि अक्सर सतह के नीचे कहानी कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी होती है।
और आखिर में पोस्ट के न्यूज़रूम की वो गूंज, खासकर एडिटर बेन ब्रैडले की जिद, सब कुछ जांचने और सही होने का महत्व, एक्यूरेसी इज एवरीथिंग।
हाँ, उन्हें पता था कि जरा सी चूक, एक छोटी सी गलती और व्हाइट हाउस उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा, पूरी जांच को बदनाम कर देगा।
उनकी सटीकता ही उनकी ढाल थी और उनकी तलवार भी, विश्वसनीयता ही उनका सबसे बड़ा हथियार था।
तो इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
देखिए, पेशेवरों के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पत्रकारिता, कानून, बिजनेस, ये किताब प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और मेथोडोलॉजी पर एक मास्टर क्लास है।
हाँ, दृढ़ता और सावधानी का महत्व, जटिल समस्याओं को कैसे मेथोडिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सुलझाया जाए।
सबूत का पीछा करो का फंडा तो कहीं भी लग सकता है। नैतिक सीमाएं बनाए रखना, दबाव का विरोध करने का साहस, ये सब सीखने को मिलता है।
और हम जैसे आम नागरिकों के लिए, सूचना के उपभोक्ताओं के लिए,
ये मीडिया लिटरेसी का बड़ा सबक है। क्वालिटी जर्नलिज्म कैसे होता है, कितनी मेहनत लगती है, सोर्सिंग, वेरिफिकेशन, और उसे अफवाहों, अटकलों या प्रोपेगेंडा से कैसे अलग करें।
ये हमें सिखाती है कि जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, चाहे सरकार हो या बड़े कॉरपोरेशन, उनके आधिकारिक बयानों पर आंख मूंद कर यकीन न करें, सवाल पूछें।
और एक आजाद प्रेस की भूमिका को समझना और उसका समर्थन करना क्यों जरूरी है, ये भी समझाती है।
नेताओं और प्रबंधकों के लिए तो ये किताब एक जोरदार चेतावनी है।
बिल्कुल, अनियंत्रित शक्ति, वफादारी के टेस्ट, डर और शक का माहौल, ये किसी भी संगठन को कैसे बर्बाद कर सकता है। निक्सन व्हाइट हाउस इसका परफेक्ट उदाहरण है,
जहां राष्ट्रपति के प्रति वफादारी कानून और संविधान से भी ऊपर हो गई थी।
सबक साफ है, असहमति को जगह दें, पारदर्शिता को बढ़ावा दें, ऐसी संस्कृति बनाएं जहां लोग बिना डर के गलत काम की रिपोर्ट कर सकें।
क्योंकि कवर अप हमेशा हमेशा असल गलती से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
और व्यक्तिगत विकास के स्तर पर भी देखें तो
वुडवर्ड और बर्नस्टीन की कहानी साहस और दृढ़ विश्वास की कहानी है, कैसे साधारण लोग मिलकर असाधारण काम कर सकते हैं।
भारी दबाव और शक्तिशाली विरोध के बावजूद हार न मानना,
अपने उसूलों पर टिके रहना।
और ह्यू स्लोन जैसे स्रोतों की कहानी भी प्रेरणा देती है, व्यक्तिगत विवेक का क्या असर हो सकता है, सही काम करने का विकल्प चुनना, भले ही उसमें व्यक्तिगत जोखिम क्यों ना हो। तो इस पूरे बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे मूल्यवान सबक?
मेरे लिए शायद ये कि सच अपने आप थाली में परोसकर नहीं मिलता। उसे सक्रिय रूप से, मेहनत से खोजना पड़ता है, खासकर तब जब ताकतवर लोग उसे छिपाने में लगे हों। खोजी रिपोर्टिंग का जो मुश्किल, ग्लैमरहीन लेकिन बेहद जरूरी काम है, उसके लिए मन में सम्मान और बढ़ गया।
और मेरे लिए ये कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रेस की आजादी का ये एक टाइमलेस डिफेंस है। और जिस तरह से ये कहानी जमीनी स्तर से बताई गई है, वो पाठक को जांच की अनिश्चितता, डर और आखिरकार जीत का अनुभव कराती है।
हाँ, वो एहसास बहुत पावरफुल है।
और ये भी कि संस्थागत शक्ति बनाम व्यक्तिगत दृढ़ता की लड़ाई में अगर कुछ समर्पित लोग तथ्यों से लैस हों तो वो दुनिया बदल सकते हैं। व्यक्ति भी मायने रखते हैं और संस्थाएं भी, दोनों जरूरी हैं।
बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ऐसी कौन सी छोटी घटनाएं या संकेत आज हमारे आसपास हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने से किसी बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।